ओम शांति। हम सब योगी आत्माएं हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर तो हमारे पास हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि आने वाली दुनिया में ना तो डॉक्टर होंगे ना हॉस्पिटल होंगे, हम सब निरोगी होंगे ना, ये तो पक्का निश्चय है ना सबको। योग से हमारी निरोगी काया कैसे बनती है, अगर हम देखें, जैसे वो कहते हैं ना, किसी को एक चाबी मिल जाए जिससे सभी ताले खुल जाएं, तो हमें ये जो बाबा का ज्ञान मिला, ज्ञान के साथ हमें बाबा को याद करने का एक सहज विधि मिली, और साथ साथ फिर जो जीवन का अनुशासन मिला, जीवन में दिव्य गुणों की धारणा और सेवा का संस्कार मिला, आप देखें तो इन सब में ही जादू है, उसी से हम निरोगी बनते हैं। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, मोटी मोटी किताबें मिलेंगी आपको हेल्थ के बारे में भी, भोजन कैसा चाहिए, नींद कैसी चाहिए, कैसे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोग अधिक बीमार हो रहे हैं। किसी ने कहा कि अगर क्राइम सोसाइटी में ज्यादा हो रहा है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं कि जेल ज्यादा बनाई जाए, उसी तरह से अगर हम बीमार हो रहे हैं तो ये सोल्यूशन नहीं है कि डॉक्टर ज्यादा आए या हॉस्पिटल ज्यादा बने, ऐसा सोल्यूशन नहीं है। आप देखें हेल्थ जो है, जो हम निरोगी काया कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया है, उसकी जिम्मेवारी किसके पास है? डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में तो हम तब जाते हैं जब बीमार होते हैं, तो ओरिजिनली और सच्चे मानों में अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी तो हमारे पास है, हम हॉस्पिटल में जाते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती, हम अपनी संभाल खुद करते हैं। बाबा ने जो हमें दिनचर्या दी है, बाबा ने जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया है, वही हमारी निरोगी काया का आधार बनेगा। सबसे पहले बाबा ने क्या किया, क्या परिवर्तन हुआ हमारे जीवन में, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा जी? बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आ गए, यानी हमारी सोच परिवर्तन हो गई, हमारी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आ गया। जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा मन है, हमारे मन में जो सोच चलती है, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, दुनिया की सोच तो बिल्कुल भिन्न है। दुनिया तो कुछ, उनको तो अगर आप कहें, सिंपल सी बात है, अगर किसी को हम कहें कि आप गुस्सा करना छोड़ दें तो मानेंगे हमारी बात, चाहे उससे उनको तकलीफ भी होती है, अशांति भी होती है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए, एक छोटी सी बात है, सबको पता है, डॉक्टर्स को भी पता है कि सिगरेट पीने से प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और सिगरेट के आजकल तो सरकार ने सिगरेट के पैकेट पे लिखवा भी दिए कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उसके ऊपर पिक्चर्स भी प्रिंट कर दिए, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं, स्मोकर्स की संख्या बढ़ रही है। तो बाबा ने हमारी सोच बदल दी, लोग जो खुशी है, जो स्टेबिलिटी है, जो जीवन में स्थिरता बाहर ढूंढते हैं, हमारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो अंदर हो गया। हम ये समझने लग गए कि बाह्य मुक्ता में कोई सुख नहीं है, सुख अंतर मुक्ता में है, सुख आत्म अभिमानी बनने में, हमारी सोच में परिवर्तन हो गया। अब आप देखिए, लोगों को सबसे ज्यादा भय किस चीज से लगता है? मृत्यु से। तो बाबा ने तो हमें बता दिया ना कि आपका अविनाशी पार्ट है, ये आत्मा अविनाशी है, आपने इतने जन्म लिए हैं और अगला जन्म भी आपका बहुत गौरवमय होगा, बहुत सुखी होगा। ये जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो हम क्या निश्चिंत हो जाते हैं ना, बेफिक्र है। हमें ये जरूर है कि अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना, अपनी संभाल तो करनी है। बाबा हमें ये भी बताते हैं कि ये शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है, इस शरीर की संभाल करनी, क्योंकि जो पुरुषार्थ या जो प्रारब्ध हम अपने इस जन्म में बना सकते हैं फिर तो नहीं बन पाएगी। तो इसलिए जीवन वैल्यूएबल है, इसमें हमें अपनी संभाल करनी है। और सबसे बड़ी संभाल क्या है? सबसे बड़ी संभाल यही है जो बाबा ने हमें दिनचर्या बताई है, वो वास्तविकता में हेल्थ प्रमोटिंग है, वो बीमारियों को वैसे ही दूर भगा देती है। अब देखो, पहले हम सुनते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो बाबा ने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया? हम सब लोग सुबह उठते हैं, अमृत वेले बाबा को याद करते हैं, बाबा से शक्ति प्राप्त करते हैं, खुशी प्राप्त करते हैं। और अभी साइंस भी ये बता रही है कि सुबह का टाइम मैक्सिमम जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज सुबह के टाइम होते हैं। आपने देखा होगा मैक्सिमम हार्ट अटैक भी सुबह के टाइम में होते हैं। तो जो सुबह सुबह का हमारा चिंतन है वो हमारे पूरे दिन की फाउंडेशन बन जाता है। आप देखो, अगर फाउंडेशन मजबूत हो, आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो फाउंडेशन पे कितना टाइम लगाते हैं, फाउंडेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, उसका कंक्रीट मिक्सचर प्रॉपर होना चाहिए, उसकी डेप्थ प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमारी जो सुबह की फाउंडेशन है वो हमारी नींव है हमारे स्वस्थ जीवन की। सुबह सुबह अमृत वेले जो हम पॉजिटिव चिंतन करते हैं, और बाबा ने अभी तो हमें ये एम्फेसाइज किया है कि आप स्वचिंतन तो करते हो लेकिन साथ में मनसा सेवा भी करो। तो जब हम पूरे संसार के लिए, अपने आसपास के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए जब शुभ चिंतन करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, तो जो वाइब्रेशंस आप एनवायरमेंट में भेजते हैं वही तो आपके पास वापस आएंगे। दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी से कभी भी पूछते, दादी आपका जीवन कैसे चलता है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है? तो दादी हमेशा यही कहती थी, मेरा जीवन तो दुआओं से चल रहा। तो जिसको दुआएं ढेर सारी मिलेंगी, उसकी सुबह की सुबह जो हम सेवा करते हैं, जो अपनी संभाल करते हैं, अपने पॉजिटिव चिंतन देते हैं। अब लोगों का दिन किस बात से शुरू होता है? शुरू होता है वो पहले उठते ही अपना फोन देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं, मेल देखते हैं, या मुरली, जिसको उनको रावण की मुरली कहें, न्यूज़पेपर को देखते हैं। तो उनको क्या मिलेगा? न्यूज़पेपर में या नेट पे हमें पॉजिटिव न्यूज़ तो कोई मिलती नहीं। वो कहते हैं ना, गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़। उनके लिए, अखबार वालों के लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ होगी वो हाईलाइट होती है सबसे पहले। कितना भी अच्छा क्यों ना होता रहे, अगर कोई दुर्घटना हो गई, कोई किसी के साथ कोई हादसा हो गया, वो सबसे बड़ी न्यूज़ होगी। तो वो नेगेटिव कंटेंट मिलता है सबको सुबह सुबह। तो हमारे जीवन की फाउंडेशन होती है। फिर हमें नरिशमेंट क्या मिलती है? हमें नरिशमेंट मिलती है मुरली से, ज्ञान से हमें हिम्मत मिलती है, ज्ञान से हमें एनकरेजमेंट मिलती है, ज्ञान से हमारे जो भी मन में दुविधा हो, आप देखते होंगे जब भी हम मुरली पढ़ते हैं किस तन्मयता से मुरली सुनते हैं। बाबा तो हमेशा पूछते हैं ना हमें, बच्चे किसकी याद में बैठे हो, आत्माभिमानी होकर बैठे हैं कि नहीं। तो जिस याद में, जिस कॉन्शियसनेस में हम मुरली सुनते हैं, वो मुरली हमें सही मानों में नरिश करती है। वो नरिशमेंट जो है वो हमें ताकत देती है। अभी साइंस ये मानती है कि मन और तन का बहुत गहरा संबंध है। जो मन में चलता है वो तन को प्रभावित करता है। आप देखें, अभी अर्ली एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कैंसर भी बहुत अर्ली एज में हो रहा है। पहले तो देर 60-70 साल के बाद किसी को हार्ट अटैक होता था, अभी 30 साल में भी हार्ट अटैक हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, जीवन में खुशी नहीं है, अकेलापन है, उदासी है। अभी मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, उसमें ये कहा कि 2030 में, यानी आज से 4 साल के बाद, उसने प्रेडिक्शन की है कि सबसे बड़ी इलनेस जो होगी वो डिप्रेशन की होगी, उदासी की होगी। अभी आप देखो कितने लोग अकेले रह रहे हैं, उनके लिए लोनलीनेस कितनी बड़ी समस्या है। हमें तो, हम कहीं भी हों, हमें ये महसूसता है कि हम बाबा की छत्र छाया में हैं। हमारे मन में ये ताकत रहती है कि बाबा हमारे साथ है। बाबा भी कहते हैं ना मुरली में कि दिल से एक बार कहो मेरा बाबा, मैं हाजिर हूं। तो वो जो स्ट्रेंथ है लोगों के पास, वो कहां है? जीवन में निराशा है, जीवन में उदासी है, संबंधों में वो मुश्किलें हैं। तो इसलिए हमारे, हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वो ताकत मिलती रहती है, और वो ताकत ट्रांसलेट होती है हमारे शरीर की ताकत में भी। वातावरण की बहुत बड़ी सिचुएशन है। वातावरण जो हम एनवायरनमेंट कहते हैं, पहले तो एनवायरनमेंट परिवार से शुरू होता है, और फिर बाहर निकलते हैं तो कहीं एयर पोल्यूशन है, तो कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ हो रहा है, कहीं साउंड पोल्यूशन है। तो वातावरण भी बाहर का कितना दूषित हो गया, लेकिन हम यहां जहां रहते हैं, सेवा स्थान पर रहते हैं, सबसे पहला अनुभव जो लोगों को होता है, वो सबसे पहले क्या आके कहते हैं कि हमें यहां शांति की अनुभूति हुई, हमें यह पीस मिली, शांति मिली, वो अनुभूति है उनकी। तो हमारी वाइब्रेशन जो है वो वातावरण को भी प्रभावित करती है। हम अपने को बचा के रखते हैं, जैसे वो सड़क में लिखा भी होता है ना, सेफ्टी सेव्स, बचाव में ही बचाव है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन हमारी मुरली है, हमारी पॉजिटिविटी है, हमारा कनेक्शन है बाबा से। वो जो ताकत मिलती है, वो ताकत मन को स्ट्रांग बनाती है। अब आप देखिए, प्रेशर तो दुनिया के कम नहीं है। हम लोग भी यहां ईश्वरीय परिवार में रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, फ्लक्चुएशंस भी होती हैं। तो जो प्रेशर्स होते हैं, वो प्रेशर्स तो रहते हैं, लेकिन हमारी, देखिए दो चीजें हैं, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है। अब एक्सटर्नल प्रेशर जो है, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कोई व्यक्ति जिसको आप पहचानते हैं, जिनके साथ आपका गया, उसका मूड अच्छा नहीं होगा, वो आपके पास आएगा। लेकिन हमारी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है, जिसको हम कोपिंग एबिलिटी कहते हैं, वो इंटरनल स्ट्रेंथ जो है वो हमें हर मुसीबत से बचाएगी। आजकल लोग कहते हैं ना, प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है, तनाव है, स्ट्रेस है, लेकिन वो तो बाहर की चीज है ना। बाहर की चीजों को हम, जब हम अपने पुरुषार्थ में भी देखें, तो हम अपने पुरुषार्थ में भी अभी देखते हैं कि जो चीजें हमें पहले प्रभावित करती थी, अब वो नहीं करती हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं। ऐसे ही जैसे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, तो बाहर का जो प्रेशर है, बाहर का जो दबाव है या टेम्पटेशंस है, वो हमें प्रभावित नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी जो मन की ताकत है, उससे हम लोग बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। अब मन भी क्या है, मन भी हमारे संकल्प हैं। संकल्प से सिद्धि भी होती है, बोलते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो हम भी अपनी सृष्टि खुद अपने संकल्पों से रचते हैं। बाबा क्यों एम्फेसाइज अभी बार बार करते हैं कि व्यर्थ संकल्प, जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जो निरर्थक संकल्प है। तो अभी विज्ञान भी यही बताता है, बहुत सी जो बीमारियां हैं, उनके कारण जो है वो यही है, हमारी सोच है। अभी जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, कोई कारण नहीं मिलता उसका, स्ट्रेस है या प्रेशर है। अब लोग हमेशा जल्दी में है, उनको सबको लगता है कि हम जल्दी से अमीर बन जाएं, जल्दी से हम ये प्राप्त कर लें, हमेशा फास्ट लेन में मूव करेंगे, अगर प्लेन भी पकड़ना है तो लास्ट मिनट पे जाएंगे, वो सब कुछ। तो वो जो जल्दी वाली आदत है, वो बाबा ने हमें धीरज दिया है। अब देखो, सबसे पहले जब जल्दी होती है तो मन में ही संकल्प चलते हैं ना, तो अगर हम अपने जीवन की प्लानिंग प्रॉपरली करते हैं, अपने दिन की प्लानिंग प्रॉपरली करते हैं सुबह से, क्योंकि हम जब जल्दी उठते हैं तो हमारे पास समय होता है अपने दिन को प्लान करने का। नहीं तो आप देखेंगे बहुत जो चीजें पहले हम सोचते थे विदेश में होती हैं वो भारत में हो रही हैं। लोगों के पास ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं है, भागते भागते कुछ खाते हैं। और साइंस ये कहती है कि अगर हमारा ब्रेकफास्ट संतुलित है, अच्छा है, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि वो पहला मेजर मील है हमारा। तो हम तो हमेशा ये सोचते हैं ना कि हमें बाबा की याद में भोजन स्वीकार करना है, तो जल्दी तो नहीं होगी ना हमें अगर हम प्लानिंग करेंगे। वो कहते भी कि इट इज स्ट्रेस फ्री टू रीच बिफोर टाइम, बट इट इज स्ट्रेसफुल टू रीच इन टाइम। हम जो समय पे बात, समय से पहले जो हम करेंगे उसमें प्रेशर नहीं होगा। और बाबा भी बार बार हमें एम्फेसाइज करते हैं कि हमारी तैयारी लंबे समय की होनी चाहिए। तो जीवन की तैयारी भी हमें प्रॉपरली प्लानिंग करनी है पूरे दिन की। बाबा हमें ये भी कहता है कि आप अपना जैसे चिंतन का भी चार्ट बनाओ, अपने संकल्पों का भी चार्ट बनाओ कि मुझे क्या चिंतन किस समय करना है। तो वो जो चीजें हम सीख रहे हैं वो सारी हमारी तैयारी है निरोगी काया के लिए। अब बाहर जो क्लाइमेट है, बाहर जो एनवायरनमेंट में हम समझते हैं तमो प्रधान है, लेकिन तमो प्रधान एनवायरनमेंट में भी कैसे बचा जा सकता है। अब जब कोविड हुआ था, सबको तो कोविड नहीं हुआ, हमारे एक डॉक्टर हैं आप सब जानते हैं योग ज्ञान योग में डॉक्टर सचिन, वो रोज वार्ड में जाते थे कोविड के पेशेंट्स को देखते थे, लेकिन उनको कोविड नहीं हुआ। तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रोटेक्शन इस बात से बढ़ती है कि हम अपनी प्लानिंग कैसे करते हैं, हमारी नरिशमेंट क्या है। साइंस कहती है कि एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं एस, एस छोटा एटेंशन कनेक्शन और एक्सप्रेशन। वो कहते हैं आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि हम अगर मान लीजिए हमें कुछ हो रहा है तो हम उसको नेग्लेक्ट करें। स्वास्थ्य का ये भी प्रिंसिपल है कि जब तकलीफ छोटी हो तो उसको तभी संभाल लेना चाहिए, ध्यान देना है हमें अपने जीवन पर। अगर मुझे सर दर्द हो रहा है तो मुझे ये कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हो सकता है मैं नींद पूरी नहीं कर रहा हूं, हो सकता है मेरी डाइजेशन ठीक नहीं हो सकता है मेरे ग्लासेस का नंबर चेंज हो गया। तो हर चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कुछ भी जीवन। फिर उसके बाद अगर मदद चाहिए तो मदद भी लें, एक्सप्रेस ए अटेंशन कनेक्शन और एक्सप्रेशन। तो वो ध्यान देने की जरूरत है, कुछ भी कोई भी सिम्टम को कोई भी मुश्किल को इग्नोर नहीं करना होता। कि जैसे मान लीजिए वो कहते हैं ना कि हम आंख बंद करके बैठ जाएं तो दुनिया तो नहीं बदल जाएगी ना, हम तो अवेकेंड तो रहना है ना हमें, तो हमें ध्यान तो हर चीज का करना है। ध्यान बाबा से भी लगाना है, ध्यान अपने जीवन पे भी देना है, ध्यान अपने आहार पे भी देना है, अपने व्यवहार पे भी देना है ध्यान। अब भोजन की बात देखो, हम कितने लकी हैं कि हम सात्विक भोजन लेते हैं। हमने कोई मेहनत की क्या? लेकिन बाबा ने बताया कि ये सात्विक भोजन आपके लिए, आपके पुरुषार्थ के लिए, आपके जीवन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। और आज साइंस वही बात कह रही है, फ्रूट्स हैं जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो हेल्थ प्रमोटिंग है। लोगों की धारणाएं जब हम पढ़ते थे धारणाएं कुछ और थी, अब धारणाएं बदल गई, साइंस भी बदल गई। लेकिन बाबा ने तो हमें पहले दिन से बताया कि भोजन ना केवल सात्विक हो लेकिन बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन हम बाबा की याद में स्वीकार करें, धीरज से शांति से स्वीकार करें, तो वो है भोजन का महत्व। और ये बहुत सी चीजें ऐसी, आप देखो अभी विदेश वालों को जब पता लगता है तो वो अपने पेटेंट करना, हल्दी का पेटेंट करना शुरू कर दिया। हल्दी अब साइंस बता रही है कि हल्दी से कैंसर जो अर्ली चेंजेस होते हैं, प्री कैंसरस चेंजेस, वो खत्म हो जाते हैं। तो वो चीजें जो हमें काफी वर्षों से भारतीय लाइफस्टाइल में हमें पता है, तो जो भोजन हमारा सात्विक है, जो भोजन प्लांट बेस्ड है, जो बाबा की याद में हम लेते हैं, बाबा की याद में बनाया जाता है, उसका महत्व अपना है। फ्रूट्स हैं, बहुत से फ्रूट्स हैं, सिंपल से फ्रूट जो आजकल तो इजीली मिलने, ब्रोकली है। ब्रोकली का एंटी, कहते हैं उसमें प्रॉपर्टीज हैं एंटी कैंसर की। कैरेट्स हैं, गाजर, जो सिंपल सी चीज है। लोग तो अब टमाटर है, टमाटर में कुछ ऐसे लाइकोपीन होता है, उसके कैप्सूल बना के बेचने शुरू कर दिए। तो जो चीजें बाबा ने हमें सिखाई हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो हमारा चिंतन, हमारा आहार, फिर आता है हमारा व्यवहार। जो शुरू में भी मैंने बताया कि सबसे बड़ी चीज है आज संसार में, ये कहते हैं, उसको बोलते हैं कनेक्टेडनेस, कि हम अलग थलग पड़ गए हैं या हम एक ही कनेक्टेड हैं आपस में। हार्ट के पेशेंट्स की जो उनको प्रॉब्लम होती है टर्मिनली, या तो उनका रिदम डिस्टर्ब होता है या उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है। तो साइंस ने ये रिसर्च किया कि जिनके मित्र अच्छे हैं, जिनके संबंध अच्छे हैं, और नहीं कुछ, अगर उन्होंने अपने पास एक पेट डॉग या पेट कैट भी रख ली, तो भी उनको वो हार्ट डिजीज से, वो जो रिदम डिस्टर्बेंसेस हैं, उनसे बचाव हो जाता है। तो सिंपल चीजें हैं, संबंध, हमारे संबंधों का आधार क्या है, बाबा ने बताया हमें, हमारे संबंधों का आधार है आत्मिक स्नेह, हमारे संबंधों का आधार है देना। बाबा कहता है आप मास्टर दाता हो, गिविंग, देना, दाता बनना। किसी को ये दाता बनने का मतलब ये नहीं है, कई तरीके हैं दाता बनने के, किसी को आपने एनलाइटनमेंट दी, ज्ञान सुनाया, किसी को एनकरेजमेंट दी, किसी को सहारा दिया, किसी को अपने चेहरे से जो खुशी की झलक से किसी को हिम्मत दी, वो भी देना है। तो गिविंग जो है, उसको भी साइंस ने रिसर्च किया कि अगर संसार में कोई चीज आपको प्रोटेक्ट कर सकती है वो है गिविंग। लेकिन अभी तक तो प्रिंसिपल लोगों का एक्सप्लॉयट करते रहे, मुझे मिलना चाहिए, अधिकार के लिए हम लड़ते हैं, लेकिन बाबा ने हमें मास्टर दाता बना दिया। हम लोगों को ये समझ में आ गई है कि संसार में वो नियम जो है, वो नियम कर्म फिलॉसफी का है, वो संकल्पों से शुरू होता है। कर्म तो अभी बहुत दूर की बात है, हमारे शब्द भी दूर के, लेकिन बाबा ने हमें ये सिखाया कि हमारे अगर संकल्प पॉजिटिव हैं, प्योर हैं, पावरफुल हैं, तो वो संकल्प ही हमें हमारे आयु बढ़ाएंगे, वो संकल्पों से परिवर्तन होगा। तो संकल्प में सिद्धि है। फिर बाबा ने हमें जो सबसे बड़ी चीज जो सिखाई है वो है अपना चार्ट लिखना। उसको भी साइंस, वो लोग जर्नलिंग कहते हैं उसको। कहा लोगों को जिनको लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, ट्रॉमा था या मुश्किलें थी, अगर वो अपना जर्नल लिखते थे तो भी उनकी इम्यून सिस्टम पावरफुल हो जाता। रिसर्च हुई कि लोग सिर्फ इतना जो भी उनकी लाइफ में हैपन हो रहा है, तो बाबा ने हमें कहा कि अपनी जांच करें, चार्ट लिखें हम अपना। बाबा हमेशा कहता है कि जैसे जो बड़े लोग होते हैं, वीआईपीज होते हैं, वो अपनी जीवन कहानी लिखते हैं, तो हमारी तो यही है कि हम ये देखते हैं कि मुझे कहां अपने आप को आगे बढ़ाना है, कहां मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपना चार्ट लिखें और फिर कुछ हमें गिल्ट हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए, नहीं। हमें ये देखना है कि आज हम क्या हैं और कल क्या होंगे। वो चार्ट लिखना भी अब साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। कि हम अगर अपना चार्ट लिखते हैं तो उससे हमें हमारे जीवन की उन्नति बढ़ती है। फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। अब हम लोग सेवा में बहुत व्यस्त हो गए हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी भी चाहिए, शरीर की संभाल के लिए जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से अभी साइंस ये बताती है कि कई केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, जिनसे खुशी मिलती है। बाबा कर्मणा सेवा की बात करते हैं कि कर्मणा सेवा से भी हमारे पाप कटते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी भी लाइफ में बहुत जरूरी है। कुछ न कुछ हम फिजिकली मोबाइल रहें, कुछ न कुछ सेवा में व्यस्त रहें, जो भी सेवा हम कर सकते हैं। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि अगर मान लीजिए आपके हाथ में, तो माताओं के लिए बोला कि रोटी बेल नहीं सकते तो रोटी को घी तो लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए। कम से कम हमें और कुछ नहीं तो आधा घंटा, और ये भी साइंस बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक समय आधा घंटा नहीं है, आप 10-10 मिनट करके तीन बार भी दिन में वॉक कर लेंगे वो भी उतनी ही लाभदायक होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत सी चीजों से बचा देती है। आज देखो, चाहे डायबिटीज है, चाहे ओबेसिटी है, चाहे ब्लड प्रेशर है, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, तो उसे आप इन चीजों से बच सकते हैं। आप अपने आप को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। फिजिकली एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जो भी बाबा ने हमें बताया स्पिरिचुअलिटी, अभी पहले तो ये था कि लोग स्टडी करते थे कि नेगेटिव चीजों से क्या, जैसे कोई गुस्सा करता है तो हेल्थ पे क्या प्रभावित होता है। अभी लोग ये रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, आप लविंग हैं या केयरिंग हैं तो आपकी हेल्थ कैसे प्रमोट होगी, आपका इम्यून सिस्टम कैसे पावरफुल होगा। उन्होंने कहा 3 C's बोला, एक कमिटमेंट, एक प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना समझ के उन्नति का साधन समझे, और तीसरा सेंस ऑफ कंट्रोल इन लाइफ। अगर ये 3 चीजें किसी के जीवन में है, 3 C's, तो वो उसकी हेल्थ को प्रमोट करेगी, उसको पीसफुल रहने में मदद करेगी। तो ये जो सारी चीजें बाबा ने हमें सेल्फ मास्टरी सिखाई है, सबसे पहला तो यही कहा ना बाबा ने, कहा कि आत्मा ये समझे कर्म इंद्रियां करण हार है, मैं करावन हार हूं। तो सेंस ऑफ सेल्फ मास्टरी, वो सेंस ऑफ कंट्रोल है। बहुत बार हम सुनते हैं कि ना चाहते हुए भी ऐसा हो गया, तो इसका मतलब ड्राइवर पावरफुल नहीं है ना, ड्राइवर अलर्ट नहीं था तभी एक्सीडेंट होता है ना। तो हमारा सेंस ऑफ कंट्रोल जितना अच्छा होगा, हमारी कमिटमेंट अपने वैल्यूज के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए, अपनी जीवन की धारणाओं के लिए, जितनी हमारी कमिटमेंट स्ट्रांग होगी उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना हमारे जीवन में मुश्किलें कम आएंगी। और कोई भी मुश्किल आ जाती है, हम कभी कभी ये सोचते हैं ये मुश्किल आ गई कहां से, मुसीबत आ गई, लेकिन ये सोचें मुश्किल आई है हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अगर रुकावट नहीं हो जीवन में तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बाबा कहते हैं ना, टेस्ट होगा तो आगे बढ़ेंगे ना। तो रुकावट, चैलेंजेस तो आएंगे, ना चाहते हुए भी आएंगे। तो वो सेंस ऑफ प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ के चैलेंज समझे, एक अवसर समझे कि ये आगे बढ़ने का अवसर है, उसको वो 3 C's कहते हैं। फिर एक और चीज उन्होंने, साइंस ने ये रिसर्च की, अभी क्या होता है हम किसी चीज को अपना आधार बना लेते हैं। अभी जैसे हम सुनते हैं, समझते भी हैं कि कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाबा ने कहा है ना कि मनसा सेवा भी कर सकते हैं कर्म। तो उन्होंने कहा सेल्फ कम्प्लेक्सिटी, लोगों के जीवन में क्या होता है वो समझते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं वर्क इज वर्शिप, वो अपने काम पे ही फोकस्ड रहते हैं। लेकिन काम अगर चला गया तो जीवन में क्या होगा। तो सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी का आधार ये है कि हम सेवा में भी ध्यान दें, अपनी पर्सनल भी प्रोग्रेस पे भी ध्यान दें, दूसरों की मदद करने में भी ध्यान दें, कुछ नया सीखने में भी हमारा इंटरेस्ट हो, इनोवेशन भी करते रहें। अब आप देखो सेवा में जो आज से 50 साल पहले सेवा थी, आज सेवा में कितनी इनोवेशन है। सोचा ना, चिंतन किया। मुझे याद है जब इमरजेंसी खत्म हुई 1974 में, ये 73 की बात है मुझे याद है, तो चंडीगढ़ में हमने एक मेला लगाया था। वो मेले में पहली बार राजयोग शिविर किया था। गवर्नर थे, वो राजयोग शिविर का उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाया था। वो बैठ के वहीं एक घंटा बैठ के सुना। तो नई नई जो अनुभव वाली बात, जब किसी को अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी रुचि भी बढ़ती है। तो इनोवेशन सेवा में है। तो हमारे जीवन का आधार भी ब्रॉड होना चाहिए। फाउंडेशन, जैसे फाउंडेशन में पिलर्स होते हैं, ऐसे केवल सेवा ही पिलर नहीं हो, स्वोन्नति भी बाबा कहते हैं, साथ में कुछ नवीनता भी पुरुषार्थ में लेके आए, साथ में कुछ नया सीखें भी। अभी आप देखें टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी ऐसी चेंज हो गई है, अब अव्यक्त बाप दादा का मिलन होता था तो डायरेक्ट मुरली सुनते थे पूरी दुनिया में। तो किसी ने तो सोचा ना, चिंतन किया ना, इनोवेशन आई। इसलिए हमारे जीवन में भी नवीनता चाहिए, नहीं तो बहुत बार हम ये कहते हैं समझ में नहीं आता, वही पुरुषार्थ, वही मुरली। लेकिन मैं तो ये देखता हूं, अब जैसे रिवाइज मुरली आज भी हमने अव्यक्त बाप दादा की सुनी, मुरलियां वो हम सबने सुनी हुई है। मैं 91 से यहां हूं, लेकिन अब जब मुरली सुनते हैं तो आंख खुलती है, पता लगता है कितने अटेंशन से और कितनी रुचि से हम मुरली सुनते हैं, और उस मुरली से हम होमवर्क क्या लेते हैं, हमें कितना इजी कर लिया। आजकल अव्यक्त इशारे आते हैं तो वो हमें होमवर्क मिलता है, लेकिन होमवर्क पे हम कितना ध्यान देते हैं। हर महीने उसका टॉपिक चेंज हो जाता है। देखो हमें चिंतन भी करने की जरूरत नहीं, बाबा हमें रोज नई युक्ति बताता है, रोज नई युक्ति से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो नई नवीनता जो है वो जीवन में बहुत आवश्यक है, पुरुषार्थ में भी, हेल्थ को भी, डाइवर्स। हमें सब कुछ पता होता है कि मुझे क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता, फिर भी हम वो लेते हैं। आयुर्वेद में तो वो ये बताते हैं कि हर एक की प्रकृति भिन्न भिन्न है, वात पित्त और कफ। वो यहां तक बताते हैं सीजन के साथ भोजन में भी क्या परिवर्तन होना चाहिए। ज्ञान बहुत है, लेकिन ज्ञान को जीवन में ट्रांसलेट करने की जरूरत है। हम अपने आप से एक्सपेरिमेंट्स करें। बहुत बार लोग जब हमारे पास पहली बार आते हैं, उनको जब भोजन की धारणा बताते हैं या ब्रह्मचर्य की बात बताते हैं, तो हम यही कहते हैं ना कि आप कुछ दिन अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने आप को आपको परिवर्तन मिलेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो हम भी अपने जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहें कि कौन सी चीज मुझे स्टेबल रखती है, यह कौन सी चीज मेरी स्टेबिलिटी को मूव करती है। तो वो जब मैं ध्यान रखूंगा तो फिर उससे मुझे मदद मिलेगी। और बहुत ये जरूरी है, ये जो बाबा ने हमें देने की बात सिखाई है, उसको भी लोगों ने स्टडी किया, उसको वो हेल्पर्स हाई कहते हैं, कि जो लोग निस्वार्थ, वो उन्होंने इस बात को एम्फेसाइज किया कि जो लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, एल्ट्रोइस्टिक। तो हम तो सब बाबा ने जो हमें कुछ जो कुछ भी दिया है, हम बिना किसी अपने लाभ के लिए तो नहीं करते ना। तो इसलिए ये हमारे व्यक्तित्व का विकास भी है, हमारे स्वास्थ्य का विकास भी है, और नई दुनिया की फाउंडेशन भी है। बाबा हमेशा हमें इस बात पे एम्फेसाइज करते हैं कि पहले हम अपनी स्थिति बनाएं। मुझे ये याद है, बात बहन जी कर रहे थे व्यवस्था की बात, जगदीश भाई थे हमारे बड़े भाई, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, छोटा आर्टिकल नहीं था, कम से कम 5-6 पेज का आर्टिकल था। उस आर्टिकल का हेडिंग था उत्तम अवस्था से उत्तम व्यवस्था। हमारी अवस्था अच्छी होती है, यहां भी हम जब सेवा कर रहे हैं, सेवा का विस्तार हो रहा है, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हम उन मुश्किलों को रिजॉल्व कैसे करते हैं वो हमारी स्थिति पे डिपेंड करता है। चैलेंजेस आते हैं, सरकार के साथ भी आते हैं, कम्युनिटी के साथ भी आते हैं, अपने परिवार में भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो सारा हमारी अवस्था पर आधार है। बाबा भी बार बार हमें ये कहते हैं, चेहरे और चलन से सेवा करें। हम हमारी सेवा का महत्व किस बात में है, सेवा जो हमें भी संतुष्टि दे और दूसरे को सुख भी दे, वो चैलेंज है हमारे सामने। तो हम जितना सबसे बड़ा, मैं तो हमेशा ये समझता हूं कि हमें ये समझना चाहिए कि हर चीज कॉन्टिन्यूस है, कोई चीज इंटरप्शन में नहीं है। जो आज हम सुख पा रहे हैं उसका आधार हमारे कल के कर्मों पर है, कॉन्टिन्यूस है। आज अगर हम स्वस्थ हैं तो उसके लिए मेहनत हो सकता है हमने 5 साल पहले की हो, हमने ध्यान रखो अपने भोजन पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, अपनी खुशी पे। तो ऐसे जो आज हम इन्वेस्ट करेंगे उसका प्रभाव हमें आज नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 5 वर्षों में मिलेगा। जो आप हम अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी खुशी में इन्वेस्ट करेंगे, अपने आदतों में इन्वेस्ट करेंगे, उसका प्रभाव हो सकता है 5 साल बाद मिले। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमारी जो जर्नी है वो कॉन्टिन्यूस है। हमारे लिए बाबा ने कितना सिंपल बता दिया। लोग तो योग को कितना मुश्किल समझते हैं, बाबा ने कहा नहीं, ये याद की यात्रा है, ये जर्नी है, कॉन्टिन्यूस है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हेल्थ है, सिकनेस है, खुशी है, ये चिंता है, वो अचानक कुछ नहीं होता। हम जब कहते हैं ना अचानक मुझे ये हो गया, नहीं, अचानक नहीं होता, कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। सिकनेस के भी अंदर सिम्टम्स हमें बाहर नहीं मैनिफेस्ट करते, अंदर चल रहे होते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूम में है। तो इसलिए आज जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमें देर से नजर आएगा। अब नेचर में भी क्या होता है, नेचर आपने देखा होगा कभी भी हरी नहीं करती। आपने बीज बोया है तो अपने समय पे वो स्प्राउट करेगा, अपने समय में उसकी स्टेम निकलेगा, पत्ते निकलेंगे, अपने समय में फल निकलेगा। तो हमारा पुरुषार्थ भी अपने समय में हमें हिम्मत देगा, लेकिन पुरुषार्थ आज करेंगे तो हिम्मत तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, वो सीड है। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि आज जो हमें प्राप्ति है, आज जो हमें खुशी है, वो आज से हो सकता है कुछ महीने पहले की मेहनत हो, और आज जो हम मेहनत करेंगे वो आगे हमें मिलेगी। कॉन्टिन्यूस पुरुषार्थ है हमारा। हमारा ये तो नहीं है, लोग समझते हैं ना, कभी कभी हम लोगों से मिलते हैं, सब लोग कहते हैं हम भी मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में लोग साइलेंस में बैठते हैं, कोई अपने ब्रेथ पे, अपने सांस पे फोकस करता है, कोई कैंडल पे फोकस करता है, कोई अपने मन के विचारों को स्टिल करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा तो मेडिटेटिव वे ऑफ लाइफ है, हमारा योगी जीवन है, सबसे डिफरेंट है। हमारी साधना, हमारी प्रेयर, हमारी मेडिटेशन सब अलग है, क्योंकि ये जीवन से कनेक्टेड है। और जो जीवन ही हमारा योगी है, जीवन ही हमारा बाबा के प्रिंसिपल्स पर है, उसकी फाउंडेशन है। तो जीवन में तो सब कुछ आ जाता है, जीवन में स्वास्थ्य भी आ जाता है, जीवन में परमार्थ भी आ जाता है। जीवन जो आज हम बना रहे हैं, आज जो मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाले अनेक जन्मों के लिए प्राप्ति होगी। तो हमारी जो फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग है, फाउंडेशन हमारी ज्ञान पर आधारित है, फाउंडेशन हमारी धारणाओं पर आधारित है, तो महल भी तो हमारा बहुत भव्य बनेगा। तो हम लोगों को तो निश्चिंत रहना चाहिए, बेफिक्र। जो बाबा की छत्र छाया में, जो भगवान की छत्र छाया में है, तो उसकी किस बात की फिक्र है। बाकी ये जरूर है कि हम लोगों को ये चेक करते रहना कि किसी चीज की मुझे डिपेंडेंस तो नहीं हो गया मैं किसी चीज पे। जिस चीज पे डिपेंडेंट हो गया मैं, उस चीज को भी हमें रोकना। अब आप देखें, मैं सुन रहा था उस दिन कि गीता में पहला जो शुरू हुआ वो अर्जुन को ये लगा कि चाचा मामा काका है, उनको मैं कैसे मारूंगा, और लास्ट में भी भगवान ने उसको नष्ट हुआ स्मृति लब्धारा। हमारी डिपेंडेंस किसी चीज पे नहीं हो, किसी संबंध पे, किसी व्यक्ति पे, किसी कंफर्ट पे। जब हम डिपेंडेंस हो जाते, हाँ हमें अपने शरीर के अनुकूल सुविधाएं चाहिए, अपने कार्य के अनुकूल सुविधाएं चाहिए, लेकिन डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता तो चाहिए। क्योंकि हम ट्रेवल करते हैं, हो सकता है वही सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कहीं बाहर जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, तो उस समय वो हमारी स्थिति में परिपक्वता हो। डिपेंडेंस नहीं चाहिए किसी भी चीज में। जब डिपेंडेंस को हम दुनिया में क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोल देते हैं। आज नशा जो है, इट्स ए मेजर प्रॉब्लम कि आदत बन गई है। बहुत से लोग, एक बार मेरे पड़ोसी थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, मेरे पास इमरजेंसी में आए, मैं चंडीगढ़ में काम, उनको सिगरेट पीते थे। मैंने कहा अंकल, कहते हैं, मैंने कहा अंकल आपको सिगरेट छोड़नी चाहिए, कहते 70 साल नहीं छोड़ी तो अभी कैसे छोड़ूंगा। तो डिपेंडेंस कोई भी होगी ना, वो हमें अंत में शॉक दे सकती है, धोखा दे सकती है। तो डिपेंडेंस हमारी किसी चीज पे नहीं हो, हम इंडिपेंडेंट रहे, सभी प्रभाव से मुक्त रहे, वो हमें इंडिपेंडेंस रहने से हम निश्चिंत रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। तो बाबा तो हमें यही सिखाता है कि हमारा जीवन ऐसा हो जो दूसरों को प्रेरणा दे, दूसरों को हमारे जीवन से शक्ति मिले, सुख मिले, वो हमारा जीवन हो, ना कि हम किसी चीज पे प्रभावित हो जाए। तो बाबा की ये जो ज्ञान है, ये जो बाबा ने हमें समझ दी है, वो समझ हमें विजडम देती है, बुद्धिमता देती है, और उस बुद्धिमता के आधार पे हम अपने जीवन को चलाते हैं। तो ना ये जीवन हमारा मुश्किल में होता है, ना आने वाला जीवन मुश्किल में होगा, क्योंकि हम समझ से चल रहे हैं। हमें अपना निशाना भी पता है और हमें अपना लक्ष्य भी पता है, उस लक्ष्य के आधार पे हम जीवन को आधारित करते हैं। तो ये बीमारियां जो है ये तो छूट जाएंगी। जो अपने पास वो डॉक्टर सतीश गुप्ता कैड प्रोग्राम चलाते हैं हार्ट डिजीज के लिए, जो लोगों को मेडिटेशन एक्सरसाइज, वो हार्ट डिजीज तो और अलग रह जाती है, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बदल जाती है, जीवन की क्वालिटी ही चेंज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो मेडिटेशन तो केवल एक साधन है, लेकिन हमारे जीवन की क्वालिटी कितनी बढ़ गई है, उसके अलावा हमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट्स कितने मिल गए हैं। तो डायरेक्ट ठीक है, भगवान की प्राप्ति हुई, हमने भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ा, उसके साथ ही हमारी बचत भी कितनी हो जाती है, इकोनॉमी भी कितनी हो जाती है, जो हम व्यर्थ खर्च करते थे, धन भी हमारा वेस्ट जाता था, तो वो कितना बच जाता है। तो जो भी व्यर्थ की चीजें थी उनसे हम अलग हो गए, हमें छोड़ने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, अपने आप छूट गए। तो ये जीवन जो है हमारा आदर्श जीवन है, ये हमारा जीवन फाउंडेशन है, और हमारा जो स्वधर्म है शांति, शांति से ही सब कुछ कनेक्टेड है। शांति से हमारी स्टेबिलिटी भी है, शांति से हमारी प्रोग्रेस भी है, शांति से हम दूसरों को भी मदद कर सकते हैं, और पीसफुल लिविंग, हेल्दी लिविंग, ये हमारे जीवन का आधार बन जाता है। ओम शांति।